हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम सब खुदावंद के हुजूर झुके हैं। इससे पहले कि उसके जिंदगी बख्श कलाम को सीखना शुरू करें, जरूरत है कि अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर कहें कि हम में गुनाह या गलती नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और खुदा को झूठा ठहराते हैं। सो उसने इसके लिए हमारे लिए हल रखा है बाइबल मुकद्दस में, पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी नामी आयत के मुताबिक, कि अगर हम अपने कमियों कमजोरियों का गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक और साफ कर सकता है। हर एक के पास मौका है वो अपनी अपनी हालत का जायजा ले, ताकि अपनी रूहानी रफाकत को खुदा के साथ बहाल करे। खामोशी में झुक जाएंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने दिया कि तेरी हजूरी में आए और तेरे कलामे अकदस में से सीखें, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के हिस्सा को ले और हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरा। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामों में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाब उसकी 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और हमारा जो मजमून है वो है सेट, यानी कि मसीह यीशु में हमारी हालत, हमारा मकाम, हमारा दर्जा, के दर हकीकत हम कौन हैं और इस जमीन पर हमारा मकसद क्या है। 22वीं आयत में यूं लिखा है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। यानी कि मुसलसल तौर पर ईमानदारों का मसीही ईमान में जमा होना और मुसलसल तौर पर बाहम तमीर किए जाना, ताकि खुदा का मस्कन बने। जैसा कि हम रूहुल कुद्दस के बारे में सीख रहे हैं कि रूहुल कुद्दस की बरकात, खिदमात, नेहमतें उसकी जात में पाए जाने वाली सिफात कौन कौन सी है, और उसके बारे में हमने बहुत गहरे तौर पर सीखा और सीख रहे हैं, और उम्मीद है कि और खुदा के फजल से सीखेंगे। क्योंकि जब हम कलाम खुदा को आयत बा आयत सीखते हैं, किताब बा किताब, खत बा खत जाते हैं, तो हमें कलाम अकदस में से वो सच्चाई समझ आती है जो खुदा बाप चाहता है कि बनीनू इंसान जाने, खासकर ईमानदार। और इसके लिए पालूस रसूल इफिसियों 3 बाप उसकी 19वीं आयत में कहता है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। वो खुदा चाहता है कि हम उसे जाने और उस सारी मामूरी से मामूर हो जिसके लिए उसने जमीन पर बनाया है। सो हम रूहानी नेमतों के बारे में सीख रहे हैं, और रूहुल कुद्दस की 6 खिदमात के बारे में हमने सीखा। 7वीं खिदमत यह है कि ईमानदारों के लिए रूहुल कुद्दस की वो नेमतें, वो खिदमात जो ईमानदारों को वो तकसीम करता है। और हमने उनकी 2 फरिश्तें देखी, एक वो नेमतों की फरिश्त जो आरजी है, और एक वो जो के मुसलसल है और मुसलसल तौर पर रहेंगी जब तक खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आकर अपनी बादशाही कायम नहीं करता। सो हम मुबशर के बारे में सीख रहे हैं। मेरे साथ निकालें इफिसियों 4 बाप उसकी 11वीं आयत से 12वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। और यहां पर लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। यहां पर जो मुबशर की खिदमत है ये मुस्तकिल है, और ये मौजूदा कलीसिया के ईमानदारों को दी गई है। और आपको मैंने सिखाया कि रूहुल कुद्दस खुदा बाप और बेटे की मर्जी के साथ शामिल होकर یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہر ایک ایماندار کو جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے کوئی نہ کوئی نعمت دے. سو یہ ہے وہ نعمت اور خدمت جو ایمانداروں کو دی گئی ہے. آج ہم سیکھیں گے مبشر کی خدمت کے بارے میں کہ مبشر کون ہے اور مبشر کی خدمت کیا ہے. جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں یونا نبی کی زندگی کو, بے شک پرانے عہد نامہ میں بہت سے لوگ مبشرانہ طور پر خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا آج آپ کو یاد دہانی کے طور پر پھر وہ تین باتیں جو کہ بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں مبشر کی خدمت میں, مبشرانہ خدمت کرنے میں, وہ آپ کو سکھاؤں گا. اس سے پہلے آپ کے ساتھ یونا نبی کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں, سکھانا چاہتا ہوں. پہلی بات, یونا نبی کے نام کا مطلب ہے فاختہ. انگلش میں اسے ڈو کہا گیا ہے اور اردو میں فاختہ, یعنی کہ اس کا مطلب ہے امن کا پیغام دینے والا, یا اس کا مطلب نکلتا ہے امن کی خوشخبری دینا, جس کے یہ مطلب نکلتے ہیں. اور ہم یونا نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب پہلا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس پر کلام نازل کیا کہ جا اس بڑے شہر نینوا میں جا کر منادی کر. لیکن تیسری اور چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنی خدمت سے بھاگا. بائبل مقدس بہت بہت گہری سچائیوں سے بھری پڑی ہے. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے مبشر کی خدمت. مبشر کی خدمت صرف اور صرف روح القدس ایمانداروں پر ظاہر کرتا ہے, اور یہ روح القدس کی خدمت ہے کہ جس کسی کو یہ نعمت حاصل ہے اس پر ظاہر کرے. جیسا کہ آپ کو کہا کہ مبشر کون ہے, بشارت کا کام کرنے والا. اس میں تین قسمیں پائی جاتی ہیں, تین قسمیں پائی جاتی ہیں. پہلی, جس میں تمام مسیحی ایمانداروں کو یہ حق اور درجہ حاصل ہے کہ وہ انجیل مقدس کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں. اس میں تمام ایمانداروں کو, خواہ کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے, ان سب کو یہ حق ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے. یہ ہے تمام ایمانداروں کے لیے مبشرانہ خدمت, یعنی کہ پوری کلیسیا کے لیے. دوسری بات, وہ شخص جسے روح القدس خاص بشارتی خدمت کو انجام دینے کے لیے چنتا ہے, یہ ہے وہ نعمت جسے خاص طور پر روح القدس نے خاص پرسن کو, یعنی کہ بیٹے کو, کسی نوجوان کو چنا ہے کہ وہ مبشرانہ خدمت کرے. اور تیسری قسم ہے ملکی سطح پر بشارتی خدمت کو انجام دینا. یہ تین قسمیں پائی جاتی ہیں مبشرانہ خدمت میں. سو ہمارا جو آج پوائنٹ ہے کہ تمام ایمانداروں کو یہ حق حاصل ہے, یہ نہیں کہ صرف یہ مبشر ہی کی خدمت ہے. مبشر کا خاص یہ تحفہ, یہ خدمت ہے خدا روح القدس کی طرف سے. لیکن ہر ایک ایماندار گواہی دے سکتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گواہی نہیں دے سکتا. شخصی یا پھر ذاتی طور پر خداوند یسوع مسیح کی گواہی یا بشارت دینا, یہ ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے فرض کہہ لیں اور بڑا ہی استحقاق کہہ لیں کہ انہیں, ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی بنیاد کیا ہے اور ان کی زندگی کس بنیاد پر یا کس چٹان پر کھڑی ہے اور ان کا مقصد اس زمین پر کیا ہے. یہ ہے شخصی یا ذاتی طور پر ہر ایک ایماندار کا گول. جیسے میں نے آپ کو بتایا تین قسمیں پائی جاتی ہیں. میرے ساتھ نکالیں پہلا تھسلیکیوں اس کا پہلا باب, اس کی چار اور پانچ آیت کو آپ کے لیے پڑھوں گا. پہلا تھسلیکیوں پہلا باب اس کی چار اور پانچ آیت سے, یہاں پر یوں لکھا ہے, اے بھائیو خدا کے پیارو, ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو, इसलिए हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फकत लफ्जी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूहुल कुद्दस और पूरे एतकाद के साथ भी। चुनाचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातर तुम में कैसे बन गए। यहां पर तीन बातें सामने आती हैं मुबशर की खिदमत में, और कोई भी ईमानदार है जो शख्सी तौर पर खिदमत को या गवाही के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुबशर की खिदमत को अंजाम देने के लिए तीन बातें हैं जो जरूरी हैं। पहली, जुबानी तौर पर गवाही, यानी के मुंह से इकरार करना जरूर है। जैसे आगे चलकर देखेंगे फिलपस की जिंदगी ने कि उसने अपना मुंह खोलकर हबशी खोजा को यीशु मसीह के बारे में गवाही दी और उसने उसे कबूल किया। दूसरी बात, गवाही रूहुल कुद्दस की कुदरत में जब दी जाए, यानी के रूह से मामूर होकर रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में दी जाए, तो वो क्या ठहरती है? फलदार ठहरती है। उसके लिए फल पैदा होता है ईमानदारों की जिंदगी में। और तीसरी बात, इम्तहान और दुखों का सामना जरूर है, और उन इम्तहानों में और उन दुखों में और मुश्किलों में यही हमारे गीत, हमारे मजमून और हमारे मजामीर और गजल की यही धुन होनी चाहिए कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और वो मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। और मुबशर की खिदमत में खा कलीसिया में से कोई भाई है, बेटा है, बेटी है, उसे खुदा इस्तेमाल करे, और खासकर मुबशर की खिदमत में ला शख्सी मोहब्बत, यानी के मोहब्बत, वो मोहब्बत जैसी खुदा की जात में मोहब्बत पाई जाती है कि हर बनी नू इंसान के साथ बेगर्ज मोहब्बत, कैसे भी हालात हो, कैसी भी मुश्किल पैदा हो, कैसा भी रवैया हो, खुदा की मानद मोहब्बत करना, ये मुबशर की जिंदगी में नमूना के तौर पर पहली बात लाजम होनी चाहिए। दूसरी, फरोतनी यीशु मसीह की मानद मजाज होना चाहिए, दिल का फरोतन होना चाहिए। और तीसरी बात जरूर है कि खुशखबरी की समझ हो, ताकि दूसरों को निजात के बारे में बताए, ताकि वो रूहानी तरक्की हासिल करें, ताकि वो जिंदगी का मकसद समझें। और इसीलिए इफिसियों 4:4 उसकी 11वीं आयत में पालूस रसूल कहता है कि उसने बाज को मुबशर, बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को चरवाहा, उस्ताद और खादम यानी के पास्टर मकरूर की मखसूस किया, मखसूस खिदमत दी उनको, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। आज क्यों हमारी कलीसियाओं में तरक्की नहीं नजर आती? आज क्यों तरक्की रुकी हुई है? क्योंकि बहुत से चर्चेज का, बहुत से मसीही ईमानदारों का जो नजरिया है सिर्फ उनकी अपनी ही तरफ है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीह कलीसिया का सर है, और कलीसिया जो कि हर एक ईमानदार है उसका बदन है। आज बहुत से ईमानदारों ने जो कि मसीह उनका सर है उसे तोड़कर अलहदा रखा हुआ है, और अपने जोर से अपने नाम को जलाल देने के लिए अपनी मर्जी से चल रहे हैं। इसी वजह से तरक्की रुकी हुई है। मसीह का बदन तब ही तरक्की पा सकता है जैसे पालूस रसूल पहला करंथियों उसके 12:12 में मिसाल के तौर पर इंसानी जिस्म के अज़ा को इस्तेमाल करता है कि अगर आंख कहे कि मैं ये हूं और हाथ कहे कि मैं ये नहीं करूंगा, बाजू कहे कि मैं ये नहीं करूंगा, तो फिर जो बदन है जैसे जिस्मानी तौर पर वो काम नहीं सही तरीके से करेगा, ऐसे ही रूहानी तौर पर ईमानदारों का बदन जो कि कलीसिया है, और जब वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, जब सही तरीके से अपनी खिदमत को, अपनी बुलाहट को नहीं पहचानेंगे, वो तरक्की का बायस एक दूसरे के लिए नहीं ठहर पाएंगे। अगर कोई कहे कि मुझे خدا نے ظاہر کیا ہے کہ مبشرانہ خدمت ہے، تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ ہم خود خدا بن جاتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یا کوئی بھی اور مسئلہ یا مدعا ہے ان کی زندگی میں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، ہمیں اس زمین پر اس کے نام کو جلال دینا ہے، تب ہی مسیحی بدن ترقی پائے گا جب ہر ایک اپنی بلاہٹ کو اور ہر ایک فرما برداری میں زندگی گزارے گا اور کہے گا کہ ہاں میں یہاں پر حاضر ہوں، مجھے استعمال کر۔ کیونکہ کلام خدا کہتا ہے، پہلا کرنتھیوس کا 12 باب اس کی 27 آیت میں، ہر ایک ایماندار کو اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضا ہو۔ ہر ایک کو خدا نے کوئی نہ کوئی نعمت برکت دی ہے، اور یہ روح القدس کی وجہ سے ہے، اور روح القدس کا ظہور بھی اسی لیے ہوا ہے تاکہ ایمانداروں کی زندگی میں فائدہ ہو۔ آج ترقی کا رکنے کا باعث بھی یہی ہے۔ مجھے کل پرسوں ایک میل ملی اپنے ہی ملک سے، اپنے ہی عزیز شہر سے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ ہو، آپ مجھے گاہے بگاہے خدا کا کلام لکھ کر بھیجتے ہو تاکہ میں مسیح کی شخصیت کو اپنی زندگی میں جانوں۔ اور اس نے لکھا کہ بھائی میں بہت شکر گزار ہوں سب چیزوں کے لیے، لیکن آج جو موجودہ ہماری مسیحیوں کی حالت وہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ لوگ اپنی شخصیت کو جانیں، تاکہ لوگ اپنی حالت کو جانیں کہ ان کی خدمت کیا ہے۔ آج چرچ کی، آج کلیسیا کی رکاوٹ سب سے بڑی شیطان نہیں بلکہ مسیحی خود بنے ہوئے ہیں کہ میں مجھے جلال ملے، نہ کہ اس جلال کے بادشاہ خداوندوں کے خدا یسوع مسیح کو۔ جب ہم اپنے سر کو جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے اس کی تابعداری میں رہیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وقت پر سر بلند کروں گا میرے ساتھ۔ یوحنا 15 باب میں اس کی 5 آیت میں غالباً آگے جا کر دیکھیں گے کیا کہا یسوع مسیح نے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو ڈالیاں ہیں، وہ جو انگور کا درخت ہے، ہم پھل پیدا نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے ہی دلاسوں میں اور اپنی ہی باتوں میں اور اپنے ہی آپ کو عزت اور جلال دینے میں پڑے ہوئے ہیں، تب مسیح کا بدن ترقی نہیں پائے گا۔ سو میرا پوائنٹ ہے یہ کہ خداوند خدا نے بعض کو مبشر کی خدمت دی۔ ضرورت ہے کہ اپنی خدمت پہچانے، جیسے پالوس رسول جانتا ہے، پالوس رسول اسے قرض سمجھتا ہے، پالوس رسول اسے اپنے لیے وہ مقدس بوجھ سمجھتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں رومیو اس کا 1 باب اس کی 15 آیت میں کیا کہتا ہے، پس میں تم کو جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدوم تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، کہتا میں ان تمام کے لیے جو یونانی ہیں وہ یونانی ہیں، کوئی دنا ہے کوئی غیر دنا ہے، ان سب کا قرض دار ہوں۔ ہم سب قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور ہمیں جو قرضہ اس زمین پر کسی بینک سے یا کسی اور تنظیم سے نہیں لیا، بلکہ اس بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے قیمتی خون سے ہمیں خریدا ہے۔ اور پالوس رسول آگے جا کر کہتا ہے غالباً رومیو 8 باب اس کی 12 آیت میں، اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے موافق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر جسم کے موافق زندگی گزاریں گے تو ضرور مریں گے، اور اگر روح سے बदन के कामों को नेस्त नबूद करेंगे तो जीते रहेंगे। उसका मतलब क्या है कि हमें अपनी हालत को जानने की जरूरत है कि हम उसका मकदस हैं, हम अगर कर्जदार हैं इसके हैं कि उसने हमें उस गुनाह की मंडी से खरीदा है और उस खरीदने का मोल क्या है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उस सारी शर्म को, सारे दुख को, सारे लानतान को ईमानदारों के लिए, आप में से हर एक के लिए, बाशमूल मेरे लिए, हर एक के लिए उस शर्म को उसने सहा, उस कर्जे को उसने उतारा, ताकि हम आजादी में, रूहानी आजादी में जिंदगी गुजारें। और पालूस कहता है कि मैं जील से नहीं शर्माता, क्यों? वो जानता है कि उसकी खिदमत क्या है। और हर एक ईमानदार को जानना जरूर है, जैसे लिखा है पहला करिन्थियों का पहला बाप 18वीं आयत में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर निजात पाने वालों के लिए खुदा की वो कुदरत है, जो कुदरत आप में आज सुकूनत करती है। ये कुदरत खुदा ने दी है आपकी किसी भी खासियत पर, किसी भी कामलियत पर, नेकी पर, सोन खूबसूरत होने पर, या कोई ऐसी और क्वालिटी होने पर नहीं, बल्कि ये उसकी मोहब्बत है जो उसने आपसे की है। और पालूस रसूल उस मोहब्बत में मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं मसीह की मोहब्बत में कैदियों की तरह गश्त करता हूं। और इसका मतलब ये है, यूनानी में जब देखते हैं, फतामंदों की तरह कहता है कि मैं क्या करता हूं, मसीह के लिए गश्त करता हूं ताकि उसकी खुशबू हमारी जिंदगी से फैले। मेरे साथ देखें दूसरा करिन्थियों दूसरा बाप उसकी 14वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है, यानी कि फतामंदों की तरह। उर्दू में असीर कहा गया है, यूनानी में हमको हमेशा फतामंदी का गश्त कराता फिरता है। कौन सी फतामंदी की वो बात कर रहा है? कि यीशु मसीह ने उसे आजाद किया है, उसने भी एक वक्त उस खुशखबरी को कबूल किया और वो उसी खुशखबरी की बशारत दे रहा है और कहता है, और अपने इलम की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि खुदा के नजदीक निजात पाने वाले और हलाक होने वाले दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। आज आप कैसी खुशबू हैं दूसरे लोगों के लिए? जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, अगर आपकी मुबशर की खिदमत है तो जरूरत है कि लाशख्सी मोहब्बत, यानी कि खुदा जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, मसीह जैसी फरोतनी होनी चाहिए, और रूहुल कुद्दस की मानद गवाही के लिए, जैसे वो भेजा गया है रहनुमाई के लिए, आप उसके इलम में मसीह की अकल रखते हुए उसके गवाह बने। और रोमियो 10 बाप उसकी 15वीं आयत में कहता है, और जब तक वो भेजे ना जाए मनादी क्यों करें। इसका मतलब पालूस रसूल क्या निकालता है, यानी कि जब तक ईमानदार अपनी खिदमत को नहीं पहचानता वो क्यों कर भेजा जाए, क्यों कर वो जाकर अपना मुंह खोले, या क्यों कर वो जाकर मौत के मुंह में खड़ा हो और कहे कि हां मैं मसीह यीशु का गवाह हूं। कहता है, और जब तक वो भेजे ना जाए मनादी क्यों करें। चुनाचे लिखा है, क्या ही खुशनुमा उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। पालूस रसूल अपनी जिंदगी से मसीह की खुशबू को फैला रहा है। यहां पर पालूस रसूल कहता है कि उनके मुबारक हैं उनके कदम जो खुशखबरी की बिशारत देते हैं। और ये खुशखबरी की बिशारत देना हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है, और खासकर हम जो बशारत का काम, जो खिदमत, जो मुबशर को सौंपी गई है वो ये है, ताकि उसका बदन यानी के मसीही ईमानदार तरक्की पाए। यीशु मसीह ने फरमाया है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसने कहा मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियों हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, तब ही तुम बहुत सा फल लाओगे और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ईमानदार किस तरह आप जान सकते हैं कि उनकी खिदमत क्या है, उनका मसीही जिंदगी में रोल क्या है? कोई भी किसी को नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ कलामे अकदस से, हर रोज जुड़े रहने से, मसीह यसु में कायम रहने से। जब उसमें कायम रहेंगे तो तब ही बहुत सा फल लाएंगे, तब ही जब फल आएगा तो फिर हर एक ईमानदार अपनी हालत को जान जाएगा। और ये किस तरह होगा, बाइबल मुकद्दस इसका बड़े ही वाजह तौर पर क्या देती है, नमूना देती है। मेरे साथ निकालें इमाल उसका छठा बाप, उसकी पहली आयत से पांचवी आयत में। आपने इस हवाला को सुना होगा और मैं भी, बहुत से लोग जानते होंगे इस हवाला के बारे में। इमाल छठा बाप उसकी पहली आयत से पांचवी आयत में हम जानते हैं कि ईद पैंतीकोस के बाद जब बहुत से ईमानदार शामिल हुए तो उन दिनों में क्या हुआ। छठी आयत के पहले हिस्सा, छठे बाप की पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में जब शिगिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी मायल यहूदी अब्रानियों की शिकायत करने लगे, क्योंकि वो उनकी बेवाओं की सही तरीके से देख रेख नहीं करते थे। और पालूस और बाकी लोगों ने क्या कहा कि हम तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम ही में लगे रहेंगे, क्योंकि उनकी खिदमत ये थी कि दिन रात खुदा के कलाम की स्टडी करें, खुदा के साथ कायम रहें, ताकि दूसरे लोगों तक सच्चाई पहुंचाने वाले बने। और उन्होंने कहा कि रूह कुद्दस से भरे हुए सात शकास चुन लो जो इनकी खिदमत करें। इन सातों को बयान नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ फिलपस की जिंदगी को यहां पर लूंगा, कि यहां पर फिलपस जो रूह कुद्दस से भरा हुआ है, शख्स है और खुदा को और कलाम की खिदमत में मशगूल है, दुआ करने में, और कलीसिया का हिस्सा है। आप कभी भी अपनी खिदमत को पहचान नहीं सकते अगर आप चर्च यानी कि कलीसिया का हिस्सा नहीं बनते, आप अपने खादम जो के मौजूदा खादम है उसकी ताबेदारी नहीं करते। वो खादम का कोई भी हो, कोई भी पास्टर खुदा ने आपके दिल में रूह कुद्दस ने डाला है कि वो आपको तालीम दे, ख्वा वो भाई जुल्फकार है, मैं हूं, पास्टर सलमून एजाज है, पास्टर सलमून न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी वाले हैं, कोई भी पास्टर है, आप अपनी खिदमत को पहचान नहीं सकते अगर आप दुआ में और काम करने में कलीसिया कामयानी के रूहानी तौर पर यानी के इलाही कुदरत की बिना पर, ना के सिर्फ पास्टर साहब को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, या फिर अपने दोस्त और बहन भाइयों को कि मैं बहुत रूहानी हूं, इस बना पर हम इस बात तक नहीं पहुंचेंगे। यहां पर क्या है, फिलपस उन सात आदमियों में से है जिसका चुनाव हुआ। और जब हम यहां पर उसके चुनाव को देखते हैं और उसकी बात को देखते हैं कि वो कलाम की खिदमत में मशगूल रहे, यानी कि वो सारी जमात में खिदमत करने में लगे रहे, ये पहली बात है। मौजूदा कलीसिया का तीन ईमानदार हैं, दस ईमानदार हैं, उसमें शामिल होना और अपनी खिदमत को अंजाम देना। वो खिदमत सफाई का काम हो सकता है, हदिया जात देने का, एक दूसरे की नसीहत करने का, कलामे मुकद्दस को पढ़ने का, एक दूसरों तक पहुंचने का, इसमें बहुत सी बातें पाई जाती हैं, इस पर फिर सीखेंगे। और आगे चलकर जब हम देखते हैं फिलपस ही की जिंदगी को देखेंगे, इमाल आठ बाप उसकी पहली आयत से जब आठवीं आयत तक का मुतालिया करते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि साउल जो कि अब पालूस कहलाता है, उसने क्या किया, जब स्टिफनस को कत्ल कर दिया गया उस दिन में जो कलीसिया यरूशलम में थी, उस पर बड़ा जुल्म हुआ और सब लोग तितर बितर हो गए। और फिलपस वहां पर पांचवीं आयत में क्या लगता है हमें नजर आता है करता हुआ, और फिलपस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। وہاں پر بہت سے معجزات ہوئے، خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اور ہم نے تین پہلی باتیں سیکھی، لفظی طور پر گواہی دینا اور پھر روح القدس کی قدرت میں، یعنی کہ زبانی طور پر جب یسوع کا اقرار کیا جائے گا، پہلا تسلیکیوں چار باپ اس کی پانچ، پہلا تسلیکیوں پہلا باپ اس کی چار اور پانچ آیت کے بعد تین باتیں وہاں پر نوٹ کرنے والی ہیں، زبانی طور پر اقرار کرنا اور روح القدس کی قدرت میں بشارت کا کام انجام دینا، تب معجزات ظاہر ہوں گے، تب خدا اپنا آپ ظاہر کرے گا مبشرانہ خدمت کے وسیلہ سے۔ اور تیسری بات، نیک چال چلن، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے اس کے نام کو جلال ملے گا۔ سو یہ ہے دوسرا حوالہ، یہاں پر فلپس منادی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور تیسرا حوالہ ہمیں ملتا ہے امال آٹھ باپ اس کی پچیسویں آیت سے چالیسویں آیت تک، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حبشی فوجہ ہے وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں ہے، لیکن فلپس جا کر اسے، روح القدس اسے وہاں پر پہنچاتا ہے اور وہ اسے گواہی دیتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، صرف ایک آیت کو دیکھیں گے، امال آٹھ باب اس کی پچیسویں آیت سے چالیسویں آیت تک یہ سارا حوالہ ہے، یہاں پر فلپس کیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پچیسویں آیت میں لکھا ہے، فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس نوشتے سے شروع کیا اور یسوع مسیح کی خوشخبری دی، اپنی زبان سے یسوع مسیح کی گواہی دی۔ اور پھر امال اکیسواں باپ اس کی آٹھویں آیت میں دیکھیں کہ فلپس کو جو نام دیا گیا ہے، پہلے انہیں خدمت کے طور پر چنا گیا ہے، پھر وہ گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر وہ مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جہاں پر امال اکیسواں باپ اس کی آٹھویں آیت میں، یہاں پر پالوس رسول اور باقی لوگ جب ان تک پہنچے ہیں تو کیا لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیں، اور دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئیں، اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہیں۔ ان ساتوں میں سے مراد یعنی کہ جب اس کا چناؤ ہوا کہ وہ یہودی اور عبرانی اور دوسرے لوگوں کی بیواؤں کی کیا کریں، خدمت کرے، ان کو کھانا پہنچانے میں، ان کی ساری باتوں میں، وہ اس وقت کا چرچ ہے، اور ضرورت ہے ایماندار تب ہی جان پائیں گے جب وہ موجودہ کلیسیا میں اپنا رول ادا کریں گے، بائبل سٹڈی میں، پرستش کرنے میں، ہدیہ جات دینے میں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے میں، صفائی کا کام کرنے میں، یہ بہت سی اس میں باتیں پائی جاتی ہیں جو ایمانداروں کو کرنا ضرور ہے تاکہ وہ اپنی نعمت کو جانے۔ روح القدس، جب آپ ایمان لاتے ہیں تب ہی روح القدس آپ کے خاتہ میں وہ نعمت، وہ برکت ڈال دیتا ہے، لیکن آپ تب تک اسے نہیں جان پاتے جب تک آپ میں کیا ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، جب تک آپ میں وہ برداشت یا وہ حالت تک یا مقام تک نہیں پہنچے کہ آپ اپنی برکت کو یا اپنی نعمت کے مطابق چلنے پھرنے والے بنے۔ سب کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنی حالت مسیح یسوع میں جاننا، اور مسیحی زندگی چلنے سے نہیں بیٹھ جانے سے شروع ہوتی ہے۔ آج کیوں بہت سے لوگ بھاگ گئے ہیں، آج کیوں، جب ہم نے خدمت شروع کی تھی تقریباً 65 اور 60 لوگوں کا گروپ تھا، کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ بیٹھنا نہیں سیکھا، چلنا شروع کر دیا۔ جب چلنا شروع کیا، دکھ آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئی، لانتان ہوا، بھاگ گئے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یسوع مسیح کو کہا کہ ہمارے پاس تیرے لیے ٹائم نہیں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں خوش ہیں کیونکہ ہم نے تیرے لیے لان تان اٹھایا۔ لیکن انہوں نے صحیح بات کو نہیں پایا کہ وہ پہلے بیٹھ جائیں اور سیکھیں تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ چلنے والے بنیں۔ جب چلنے کے قابل ہوں گے تب ہی مسیحی ایماندار کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے مسیحی زندگی کا راز اور اس پر ہم سیکھ رہے ہیں. سو ہم نے دیکھا کہ فلپس یہ وہ ہے جو مبشر ہے جو ان ساتوں میں تھا. بائبل مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایماندار یعنی کہ مسیح کا بدن ترقی پا سکتا ہے جب ہر کوئی فرما برداری سے خاکساری سے حلیمیت سے خداوند کے حضور جھکے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ میں بلکہ یہاں پر ہوں خداوند تو تیرے نام کو جلال دینے کے لیے. میں کسی انسان کو کسی اور اپنے رشتے دار کو یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ تجھے خوش کرنے کے لیے. بہت دفعہ بہت سے لوگ رویا اور خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام شروع کرنا ہے یہ کام شروع کرنا ہے. کہاں پر گئی وہ رویا, کہاں پر گئے وہ خواب اور کہاں پر گئے وہ سارے دعوے. یہ شرمندگی طور پر نہیں بلکہ یاد دہانی کے طور پر آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ یاد کریں کہ کون سے الفاظ آپ نے خداوند کی حضوری میں کہے تھے. سو مسیح کا بدن کس طرح ترقی پا سکتا ہے؟ مسیح سے جڑے رہنے سے, مسیح میں قائم رہنے سے. ایماندار جب کلام خدا کی باتوں میں مگن رہیں گے, کیونکہ اگر اس سے جدا ہوں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پلوس رسول تموتھیس کو یہ بات خبرداری کے طور پر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار جن کو آپ کو جو بھی کوئی سننے والا ہے آپ کی اگر بلاہٹ ہے مبشر کے طور پر تو وہ پالوس اصول کی خبرداری آپ کے لیے بھی ہے. میرے ساتھ نکالیں دوسرا تموتھیس اس کا تقریباً چار باب. دوسرا تموتھیس چار باب اس کی چند ایک آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں پر پالوس رسول تموتھیس کو آگاہ کرتا ہے. یہاں پر ہم تموتھیس کی زندگی میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو مبشر کی زندگی میں نمونہ کے طور پر ہونی چاہیے. پہلی آیت میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے, اور خداوند مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے حضور اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں. کسے؟ تموتھیس کو. کہ تو کلام کی منادی کر, وقت اور با وقت مستحد رہ, ہر طرح سے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. وہ باتیں وہ کہتا ہے کہ ان میں کیا رہے, خبردار رہے, کلام کی منادی کرنے میں ہوش کیا رہے, ہر وقت تیار رہے. تحمل سے یعنی کہ اپنی زندگی سے مسیح کی فروتنی کو جدا نہ ہونے دے, اور تعلیم کو حاصل کر تعلیم کے ساتھ سمجھا دے, اور ضرورت پڑے تو ملامت اور نصیحت بھی کر. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. یہاں پر آ کر کلیسیا کی ترقی رک جاتی ہے, اور جس ایماندار کی زندگی میں جب وہ کانوں کی کھجلی کے باعث کبھی وہاں پر چھلانگ لگائی کبھی وہاں پر چھلانگ لگائی اور سنجیدگی سے خدا کی حضوری میں کلام سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا, تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی خواہش کے موافق جس سے چند ایک اچھی لائنیں سن لی, ہو یہ بہت اچھا ہے, او یہ بہت اچھا ہے, وہ پھر بھٹکتا رہتا ہے. اور وہ پھر کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن پالوس رسول تموتھیس کو کہتا ہے, مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ. پہلے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ جاگتے رہنے کی ضرورت ہے, دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات کہتا ہے, بشارت کا کام انجام دے اور اپنی خدمت کو پورا کر. अपनी खिदमत को पूरा कर, हर एक को अपनी खिदमत, अपनी नेहमत और अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। और पालूस रसूल उसे पहले तमोथियस के खत में आगाह करता है। पहला तमोथियस गालबन उसका चार ही बाप में उसे कहता है कि मेरे साथ देखें 12वीं आयत को, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे कर पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चार चलन और मोहब्बत में और ईमान में और पकीजगी में नमूना बन। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रह। यहां पर वो बात है, उस नेहमत से गाफल ना रह जो तुझे हासिल है। हर एक को कोई ना कोई नेहमत दी गई है, लेकिन जरूरत है होशियार, जरूरत है जागने की, जरूरत है अपने आप को हलाने की। आज का ये मैसेज बेशक बहुत से लोगों के लिए एक हथौड़े की मानद होगा, लेकिन खुदा चाहता है कि आज जागें, होशियार हों, ताकि जो दुख उठाते हैं वो बेफायदा ना उठाएं, अपनी बेवाकूफियों के बायस अपनी जिंदगियों में उछलते फिरते ना फिरें, बल्कि अगर दुख उठाएं तो मसीह की खातर, अगर गवाही दें तो उसकी, ना के मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझसे ये जाहिर हुआ। वो कहता है कि उस नेहमत से गाफल ना रह जो तुझे हासिल है, और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे मिली, इन बातों की फिक्र कर, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो, और अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों में कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस है। यहां पर मसीह के बदन की तरक्की होगी जब ईमानदार जानेंगे, और ईमानदारों को जानने के लिए हाल क्या है, फिलिपस की जिंदगी को देखें, मसीह के बदन से जुड़े रहने की जरूरत है, मसीह के ताबिया होने की जरूरत है। और कलाम खुदा फरमाता है कि हर एक शख्स में रूह का जहूर फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। और मेरे साथ चलें हमारा बुनियादी हवाला, इफ़सियों दो बाप उसकी 22वीं आयत, इफ़सियों दो बाप उसकी 22वीं आयत, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। बाहम तमीर किए जाते हो, हर एक ईमानदार मुसलसल तौर पर तमीर किया जाता है, नए ईमानदारों को मसीही मजमा में जमा करने की, लाने की जरूरत है। और ये कब होगा, जब हर कोई अपनी खिदमत को पहचानेगा। और तो इसीलिए पालूस रसूल इफ़सियों चार बाब उसकी 12वीं आयत में कहता है, 11वीं आयत से पढ़ूंगा, और बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। तब हम जब अपनी हालत को पहचानेंगे, अपनी खिदमत को, अपनी बलाहट को पहचानेंगे, तो कामलियत की तरफ बढ़ेंगे, तजर्बाई तौर पर अपनी जिंदगी में कामलियत को जानेंगे, और फिर खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा। फिर क्या होगा, पूरा एतकाद होगा कि किस लिए मैं जमीन पर हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा शहर क्या है, मेरी मंजिल क्या है। और फिर मसीह का बदन तरक्की पाएगा। आज आपको अपनी अपनी जिंदगी में झांकने की जरूरत है। अगर सोचते हैं तो वो कहता है कि सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, सोए हुए लोग किसी भी बात को जान नहीं सकते, और वो नहीं जानते कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है जब सोते हैं। जागने की जरूरत है, तब ही मसीह का बदन तरक्की पाएगा, तब ही रूहानी इस्लाह और तरक्की होगी, तब ही बालग मसीह पैदा होंगे। आज अपने अपने मजमून लेकर या अपने अपने एजेंडा लेकर मत खड़े हों कि मैं मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है, किसी से सुन लिया मेरी ये रोया है और दूसरे दिन मेरी भी ये रोया है। अगर रोया है तो फिर उस रोया के मुताबिक काम करने की जरूरत है, खिदमत करने की जरूरत है। अगर बलाहट है तो उस बलाहट के लिए खड़े होने की जरूरत है ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। दुनिया को खुश करने के लिए मत कहें कि मेरी ये बलाहट है, मेरे नाम के साथ बिशप जुड़ा हुआ है, पास्टर जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के साथ बहुत से और टाइटल जुड़े हुए हैं, लेकिन सोए हुए हैं। इसलिए वो कहता है कि जागने की जरूरत है। और रूहुल कुद्दस का जहूर इसलिए हुआ है कि हर एक शख्स के लिए फायदा हो, और वो फायदा हर एक ईमानदार के लिए है ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। आए हम खुदावन के हुजूर चुके हैं। आसमानी बाप, आज के कलाम के लिए जो कड़वी सच्चाई है, हर एक को कबूल करने की हिकमत और दनाई दे, और तेरा कलाम जो आईने की तरह साफ है हमारे हर तरह के उस नकलीपन को, उस बरूप, उस बिगड़े हुए भेद भेस को जो हमने धारा हुआ है, उसे साफ जाहर करता है, हमें हमारी सच्ची तस्वीर दिखाता है। सो खुदा बाप, हमें अपनी हजूरी में फरोतन बना ताकि यीशु मसीह के नाम के लिए इस जमीन पर इस्तेमाल हो, ताकि उसके नाम को जलाल मिले। अगर आप में से सुनने वालों ने पहले कभी किसी ने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, तो उनके लिए दावत है। कलाम खुदा कहता है, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो तुम निजात पाओगे। निजात यानी कि कभी भी खत्म होने वाली, कभी भी ना खत्म होने वाली जिंदगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक जाती डिसीजन, जाती फैसले पर होगा। अपनी शख्सी हालत में उससे बात करें, आज ही उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और आप खुदा के घराने के लोग बन जाएंगे। खुदा बाप, सबको छू, इनकी हिकमत और दनाई जो तेरी तरफ से है रोशन कर, ताकि यीशु मसीह नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमेन।